एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी के संक में आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसे जापानी दार्शनिक के विचारों के गहरे समंदर में, जिन्होंने आप कह सकते हैं इतिहास को समझने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं कोजिन करातानी और उनकी बेहद प्रभावशाली किताब विश्व इतिहास की संरचना की।
जी हाँ, द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और करातानी का काम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मतलब मार्क्सवाद जैसी स्थापित विचारधाराओं को एक नई कसौटी पर कसते हैं।
अच्छा,
जहाँ मार्क्स ने इतिहास की गाड़ी का इंजन उत्पादन के तरीकों को माना, करातानी कहते हैं कि नहीं, असली चालक शक्ति तो विनिमय के तरीके हैं।
विनिमय के तरीके यानी मोड्स ऑफ एक्सचेंज।
हाँ, लेन देन के अलग अलग ढंग, ये वो बुनियाद है, उनका मानना है, जिस पर मानव समाज टिका है।
और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, है ना? मतलब इसका आज की दुनिया से सीधा कनेक्शन है।
बिल्कुल, करातानी इसी चश्मे से देखते हैं कि हमारी आज की दुनिया, ये पूंजीवाद, ये राष्ट्रों का बनना, ये ताकतवर सरकारें, ये सब कैसे वजूद में आया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस उलझे हुए ताने बाने से, इसके संकटों से आगे बढ़ सकते हैं?
तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं, काफी दिलचस्प लग रहा है।
हाँ बिल्कुल, पहले करातानी को थोड़ा जान लें।
हाँ बताइए, कौन है कोजिन करातानी?
कोजिन करातानी, जिनका जन्म 1941 में हुआ, वो जापान के आज के दौर के सबसे अहम दार्शनिकों और साहित्यिक आलोचकों में गिने जाते हैं।
अच्छा, दार्शनिक भी और साहित्यिक आलोचक भी।
जी, उनका काम कई मैदानों में फैला है, दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति, साहित्य, सब कुछ।
ये बात तो वाकई दिलचस्प है कि शुरुआत उन्होंने एक साहित्यिक आलोचक के तौर पर की, काफ्का पर, सोसेकी पर काम किया, और फिर धीरे धीरे दर्शन और राजनीति के इतने बड़े सवालों की तरफ मुड़ गए।
निश्चित रूप से, और शायद यही उनकी खासियत भी है। वो कोई पारंपरिक इतिहासकार या अर्थशास्त्री नहीं है।
अच्छा,
वो एक दार्शनिक की नज़र से, एक संरचनावादी नज़रिए से इतिहास की बनावट, उसके अंदर छिपे पैटर्न को देखते हैं। मार्क्सवाद की उनकी गहरी समझ उन्हें इसकी नींव पर कुछ नया बनाने और साथ ही इसकी सीमाओं को उजागर करने की ताकत देती है। और जर्मन दार्शनिक कांट,
हाँ कांट,
कांट के विचारों में उनकी पकड़ भविष्य के समाज की उनकी कल्पना को एक नैतिक आधार देती है। वे पूरब और पश्चिम के विचारों का एक अनूठा संगम रचते हैं, जिसे वो खुद ट्रांसक्रिटिक कहते हैं।
ट्रांसक्रिटिक, ये क्या है?
ये एक तरीका है, मतलब अलग अलग विचार प्रणालियों की जड़ों में जाकर उनकी बुनियादी संरचनाओं की पड़ताल करना, सीमाओं के पार जाकर आलोचनात्मक ढंग से सोचना।
अच्छा, तो फिर मार्क्स से उनकी मुख्य असहमति कहाँ है? मार्क्स का उत्पादन के तरीके वाला ढांचा तो बहुत प्रभावशाली रहा है ना?
हाँ, प्रभावशाली तो रहा है, लेकिन करातानी मानते हैं कि उत्पादन के तरीके का ढांचा राज्य और राष्ट्र के लगातार बनी रहने वाली ताकत को पूरी तरह समझा नहीं पाता।
राज्य और राष्ट्र, हाँ ये बात तो है।
राज्य सिर्फ अमीरों का हथियार नहीं है और राष्ट्र सिर्फ एक धोखा नहीं है। इनकी अपनी एक गहरी पकड़ है, अपनी एक अलग लॉजिक है। करातानी तर्क देते हैं कि ये केवल आर्थिक चीजें नहीं हैं।
तो फिर विकल्प क्या है?
इसीलिए वे अपना विकल्प सामने रखते हैं, विनिमय के चार तरीके। और यहाँ सबसे क्रांतिकारी बात ये है, जैसा मैंने पहले कहा, कि ये तरीके इतिहास में एक के बाद एक नहीं आते।
अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि पहले एक था फिर दूसरा आया?
नहीं, बल्कि हर समाज में, हर दौर में ये चारों एक साथ मौजूद रहते हैं। बस कोई एक तरीका बाकियों पर हावी हो जाता है, कभी एक कभी दूसरा।
चारों एक साथ, ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। कौन से हैं ये चार तरीके?
हाँ, नाम सरल है पर उनकी गहराई देखिए। पहला है मोड ए, पारस्परिकता।
पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी।
हाँ, इसे आप उपहार अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। लेनवेन आपसी भरोसे, रिश्तेदारी और सामाजिक बंधनों पर आधारित होता है, जैसे शुरुआती कबीलाई समाजों में था। देना और लेना एक सामाजिक कर्तव्य है, जरूरत से ज्यादा।
ठीक है, समझा, मोड ए।
दूसरा है मोड बी, लूट और पुनर्वितरण, प्लंडर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन।
लूट, सीधा लूट।
हाँ, करातानी यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये है राज्य का तर्क, यहाँ ताकत का इस्तेमाल होता है, टैक्स वसूलना, जिसे वो लूट मानते हैं, और फिर उसी पैसे को अपनी सत्ता बनाए रखने, वफादारी खरीदने और व्यवस्था चलाने के लिए बांटना। पुराने साम्राज्य इसी मोड बी पर टिके थे।
समझ गया, कंट्रोल और ताकत, मोड बी।
तीसरा है मोड सी, वस्तु विनिमय,
कमोडिटी एक्सचेंज।
ये तो बाजार हुआ है ना? बिल्कुल, ये बाजार का सिद्धांत है। पैसा यहाँ मुख्य भूमिका निभाता है, चीजें और यहाँ तक कि इंसान की मेहनत भी खरीदी बेची जाती है। यहाँ लेन देन सहमति से होता है, पर मकसद होता है मुनाफा कमाना। ये पूंजीवाद का मूल मंत्र है।
मोड सी यानी कैपिटल।
ठीक, और चौथा?
हाँ, आपने कहा वो सबसे रहस्यमय है।
हाँ, चौथा जो सबसे दिलचस्प और शायद उम्मीद जगाने वाला है, वो है मोड डी, एसोसिएशन, या कहें एक्स फैक्टर।
एसोसिएशन मतलब संग बनाना।
हाँ, पर ये साधारण संघ नहीं है, ये एक तरह से मोड ए यानी पारस्परिकता की वापसी है, लेकिन छोटे कबीलाई स्तर पर नहीं, बल्कि एक ऊंचे सार्वभौमिक वैश्विक स्तर पर।
अच्छा, कैसे?
ये वो इच्छा है जो हमें समुदाय के दबाव से, राज्य के जोर बी से और बाजार के लालच सी से आजाद होकर बराबरी और आपसी सम्मान के आधार पर जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। करातानी इसके बीज दुनिया के महान धर्मों और नैतिक दर्शनों में देखते हैं, जहां वसुधैव कुटुंबकम या सब इंसान बराबर हैं जैसी बातें कही गईं। ये वो नैतिक पुकार है।
मोड डी, ये तो बिल्कुल अलग है, ये भविष्य की बात ज्यादा लगती है।
हाँ, ये भविष्योन्मुखी है, लेकिन करातानी मानते हैं कि ये हमेशा से एक संभावना के तौर पर मौजूद रहा है, और यहीं से उनकी वो मशहूर अवधारणा आती है, पूंजी राष्ट्र राज्य की तिकड़ी।
हाँ, ये मैंने सुना है, बुरोमियन गांठ, ये बहुत अहम लगती है।
बिल्कुल, शायद यही करातानी का सबसे ताकतवर, सबसे ओरिजिनल विचार है। वे कहते हैं कि हमारी आज की दुनिया सिर्फ पूंजीवाद यानी मोड सी से नहीं चलती, ये तीन चीजों की एक बुरोमियन गांठ है।
बुरोमियन गांठ मतलब वो तीन छल्लों वाली गुत्थी, कि एक को काटो तो सब अलग।
एकदम सही, वो तीन छल्ले हैं। पहला, पूंजी, कैपिटल, मोड सी यानी बाजार, मुनाफा कमाने की अंतहीन दौड़।
ठीक।
दूसरा, राज्य, स्टेट मोड बी यानी आज की सरकारें, जिनके पास कानून, सेना, पुलिस और टैक्स वसूलने का एकाधिकार है। ये पूंजी को काम करने के लिए सुरक्षा और नियम कानून देता है।
हाँ,
और तीसरा, राष्ट्र, नेशन मोड ए का बदला हुआ उदात्त रूप यानी हम भारतीय, हम जापानी जैसी भावना, ये राष्ट्र की कल्पना है।
पर राष्ट्र मोड़े कैसे हुआ? मोड़े तो कबीले जैसा था।
करातानी कहते हैं कि राष्ट्र असल में मोड ए, वो समुदाय वाली, अपनेपन वाली भावना का ही एक विशाल, आधुनिक और काल्पनिक रूप है। ये लाखों करोड़ों अनजान लोगों में एक अपनेपन का एहसास जगाता है।
हाँ, ये बात तो है।
ये एहसास इतना ताकतवर होता है कि ये पूंजीवाद से पैदा हुई अमीर गरीब की खाई पर पर्दा डाल देता है और लोगों को अपने राष्ट्र के नाम पर राज्य मोड बी के लिए जान देने को भी तैयार कर देता है। तो राष्ट्र क्या करता है? वो मोड ए वाली पारस्परिकता की भावना को लेता है और उसे राज्य और पूंजी को जोड़ने वाले गोंद की तरह इस्तेमाल करता है।
बाप रे, तो ये तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मतलब पूंजी, राष्ट्र और राज्य, ये तीनों मिलकर ही चलते हैं।
हाँ, यही करातानी का मूल तर्क है। पूंजी को फलने फूलने के लिए राज्य की स्थिरता और कानूनों की जरूरत है।
सही।
राज्य को अपनी ताकत बनाए रखने और खर्चे चलाने के लिए पूंजी से मिलने वाले टैक्स और आर्थिक तरक्की की जरूरत है।
बिल्कुल।
और इन दोनों को, मतलब पूंजी और राज्य दोनों को, समाज को जोड़े रखने, लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए राष्ट्र की भावनात्मक शक्ति की जरूरत है, वो हम वाली फीलिंग।
तो इसीलिए उनका कहना है कि अगर आप सिर्फ पूंजीवाद से लड़ेंगे लेकिन राष्ट्रवाद और राज्य की ताकत को नजरअंदाज करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे।
बिल्कुल, ये तिकड़ी बहुत मजबूत और लचीली है। एक को हटाओ तो बाकी दो भी बिखर जाते हैं, लेकिन जब तक तीनों हैं, एक दूसरे को सहारा देते रहते हैं।
ये बात 20वीं सदी की क्रांतियों, खासकर साम्यवादी क्रांतियों पर उनकी आलोचना को समझाती है। उन्होंने कहा था वो विफल रही।
एकदम सही। करातानी का तर्क है कि रूस और चीन जैसी क्रांतियां इसलिए, मतलब पूरी तरह सफल नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने निशाना तो साधा पूंजी मोड पर।
हाँ।
लेकिन इसके लिए उन्होंने राज्य मोड बी की ताकत का ही इस्तेमाल किया और उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा केंद्रीकृत बना दिया।
अच्छा, तो वो मोड सी को हटाने के चक्कर में मोड बी को और ताकतवर बना बैठे।
बिल्कुल, सोवियत संघ एक विशाल मोड बी सिस्टम बन गया, एक अति केंद्रीकृत दमनकारी राज्य, न कि वो आजाद नागरिकों का संघ जिसका सपना देखा गया था। वे कहते हैं, एक तरह से आप मालिक के घर को तोड़ने के लिए मालिक के ही औजारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
हम गहरी बात है।
सच्ची आजादी के लिए उनका मानना है पूंजीवादी विरोधी, राज्य विरोधी और राष्ट्रवाद विरोधी तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा।
तीनों मोर्चों पर एक साथ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। खैर, ये तो हुआ उनका सैद्धांतिक ढांचा। किताब में वे इसे इतिहास पर कैसे लागू करते हैं, कुछ उदाहरण है?
हाँ बिल्कुल है। करातानी हमें एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाते हैं। किताब के पहले हिस्से में वे दिखाते हैं कि कैसे शुरुआती छोटे छोटे समाज, जिन्हें वो मिनी वर्ल्ड सिस्टम कहते हैं, मोड ए यानी आपसी लेन देन पर चलते थे, और कैसे राज्य यानी मोड बी अक्सर बाहर से आया, जैसे खानाबदोश कबीलों ने खेती करने वाले समाजों पर कब्जा करके लूट और पुनर्वितरण का सिस्टम थोप दिया।
अच्छा,
दूसरे हिस्से में वे रोम और चीन जैसे बड़े विश्व साम्राज्यों को देखते हैं, जहां मोड बी यानी राज्य की सत्ता चरम पर थी, टैक्स वसूला जाता था और फिर सेना, नौकरशाही और वफादारों में बांटा जाता था।
हाँ, ये तो क्लासिक एम्पायर मॉडल है।
सही, लेकिन मजे की बात यह है कि इन्हीं विशाल साम्राज्यों के अंदर उनकी परिधि पर या उनके बीच के खाली स्थानों में मोड डी यानी सार्वभौमिक नैतिकता या धर्म के बीच भी पनपे।
ओह, उसी दौरान?
हाँ, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, इन सब ने रिश्तेदारी ए और राज्य बी की सीमाओं से परे जाकर एक विश्व बंधुत्व और बराबरी का संदेश दिया। हालांकि ये भी सच है कि अक्सर इन धर्मों का इस्तेमाल भी बाद में राज्य ने अपने फायदे के लिए किया। मोड बी ने मोड डी को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की।
समझ गया। और फिर आधुनिक दुनिया, ये पूंजी राष्ट्र राज्य की गांठ कैसे बनी, ये कब हुआ?
ये किताब का तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ कारातानी समझाते हैं कि कैसे यूरोप में मोड सी यानी बाजार और पैसे का बोलबाला धीरे धीरे बढ़ा, कैसे इसने समाज के हर रिश्ते को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू किया।
हाँ।
और कैसे फिर ये राज्य एक के नए रूप के साथ मिलकर आज की ये शक्तिशाली तिकड़ी बन गया, खासकर औद्योगिक क्रांति के बाद।
और वो सिर्फ यूरोप की बात करते हैं?
नहीं, यही उनकी खासियत है। वे सिर्फ यूरोप पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि जापानी इतिहास जैसे गैर यूरोपीय उदाहरणों का भी विस्तार से इस्तेमाल करते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये प्रक्रिया दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे अलग ढंग से सामने आई, लेकिन अंततः संरचना वही तिकड़ी वाली बनी।
ये तो उनके विश्लेषण को ज्यादा वैश्विक बनाता है।
बिल्कुल, और किताब का अंतिम भाग, चौथा भाग, वो भविष्य की ओर देखता है।
भविष्य मतलब मोड डी की तरफ?
हाँ, क्या हम इस पूंजी राष्ट्र राज्य की तिकड़ी से आगे जा सकते हैं? क्या हम सचेत रूप से जानबूझकर मोड डी यानी एसोसिएशनिज्म बना सकते हैं, जहां लोग लालच, डर या झूठे अपनेपन नेशन ए से नहीं बल्कि स्वतंत्र इच्छा और आपसी सम्मान से जुड़ें?
ये सवाल तो आज भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, आपने मार्क्स और कांट का जिक्र किया, क्या वे किसी और विचारक से भी मतलब डायलॉग में है?
हाँ, मार्क्स और कांट तो उनके लिए लगातार संवाद के साथी हैं ही। कांट के विचार, खासकर किंगडम ऑफ एंड्स और शाश्वत शांति का विचार, मोड डी की उनकी कल्पना को नैतिक बल देते हैं। इसके अलावा वे अमेरिकी समाजशास्त्री इमैनुअल वॉलस्टीन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत से भी काफी कुछ लेते हैं, हालांकि उसमें अपने सुधार भी करते हैं।
वॉलस्टीन, हाँ, वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी, कोर और पेरिफेरी वाली बात।
जी, वॉलस्टीन के तरह करातानी भी मानते हैं कि देशों को अलग थलग देखने के बजाय पूरी दुनिया को एक सिस्टम के तौर पर देखना चाहिए। राज्य या पूंजीवाद जैसी चीजें हवा में पैदा नहीं होती, बल्कि देशों के आपसी संबंधों और वैश्विक व्यवस्था से तय होती हैं। करातानी इसमें मोड ए और मोड बी राष्ट्र की भूमिका को और स्पष्ट करते हैं।
तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आज के दौर में 21वीं सदी में करातानी के विचार हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं? क्या ये हमें आज की उलझनों को समझने में कुछ मतलब निकालने में मदद करते हैं?
मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। उनका ढांचा हमें कई चीजें एकदम साफ साफ देखने में मदद करता है।
जैसे कि?
जैसे दुनिया भर में राष्ट्रवाद का जो उभार हम देख रहे हैं।
हाँ बिल्कुल,
करातानी के नजरिए से देखें तो ये समझा जा सकता है, जब बाजार मोट सी लोगों को आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस कराता है। जब उन्हें लगता है कि उनकी पहचान खतरे में है, तो वे सुरक्षा और अपनेपन के लिए राष्ट्र मोड ए का वो विकृत काल्पनिक रूप की तरफ मुड़ते हैं। राज्य भी अक्सर इसे हवा देता है।
ये तो बिल्कुल सटीक लगता है। और
ग्लोबलाइजेशन जो मोड सी का फैलाव है, और देशों की अपनी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी जो मोड बी की ताकत है, के बीच जो लगातार तनाव चलता रहता है, उसे समझने में मदद मिलती है। ये सी और बी के बीच की खींचतान है।
हाँ, ये ट्रेड वॉर्स वगैरह।
बिल्कुल। और आज के सामाजिक आंदोलनों को देखें, चाहे वो पर्यावरण बचाने का आंदोलन हो, मानवाधिकारों की लड़ाई हो, या डिजिटल दुनिया में ओपन सोर्स समुदाय हो, विकिपीडिया हो, इन्हें हम मोड डी के प्रयास के रूप में देख सकते हैं। ये राज्य बी और पूंजी सी के तर्क से परे जाकर एक अलग सार्वभौमिक नैतिकता और सहयोग की बात कर रहे हैं। ये पारस्परिकता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर।
ये विश्लेषण तो बहुत दिलचस्प है, आंखें खोलने वाला है। पर क्या यह सिर्फ समझने के लिए है, या इससे हमें कुछ करने का रास्ता भी मिलता है? अगर ये पूंजी राष्ट्र राज्य की गांठ इतनी मजबूत है जैसा आप कह रही हैं, तो इसे चुनौती कैसे दी जाए? क्या यह मुमकिन भी है?
करातानी सिर्फ विश्लेषण नहीं करते, वे दिशा भी दिखाते हैं। उनका कहना है कि लड़ाई एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि तीन मोर्चों पर एक साथ लड़नी होगी, जैसा हमने पहले कहा।
हाँ, वो त्रिआयामी युद्ध।
सही। पहला, आर्थिक मोर्चा, पूंजीवाद मोडरी के विकल्प खड़े करना, जैसे सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट यूनियंस, लोकल एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम, लेट्स, आपसी सहायता के नेटवर्क, छोटे स्तर पर ही सही।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा, राजनीतिक मोर्चा, राज्य मोड भी पर निर्भरता कम करना और उसके समानांतर अपने संगठन खड़े करना। ऐसे संगठन जो ज्यादा विकेंद्रित हों, नीचे से ऊपर की ओर चलें, आपसी सहमति से चलें, और जिनकी पहुंच राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी हो, मतलब ट्रांसनेशनल मूवमेंट।
ये मुश्किल लगता है।
मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। और तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक मोर्चा, संकीर्ण राष्ट्रवाद यानी मोड ए का विकृत रूप, कुछ चुनौती देना और एक वैश्विक भाईचारे, एक कॉस्मोपॉलिटन भावना को मजबूत करना, ये समझना कि हम सब इंसान पहले हैं।
तो मतलब लोकल एक्शन और ग्लोबल सोच दोनों साथ साथ।
बिल्कुल। उनका एसोसिएशनिज्म जमीनी स्तर के छोटे छोटे प्रयासों को बहुत महत्व देता है। फूड कोऑप्स, किसानों के संगठन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर समुदाय, वैकल्पिक मीडिया, ये सब उनके लिए मोड डी के व्यावहारिक प्रयोग हैं। ये भविष्य के समाज के वो बीज हैं जो आज की जमीन में ही बोए जा सकते हैं, इसी तिकड़ी के बीच में।
तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, करातानी कह रहे हैं कि क्रांति शायद ऊपर से नहीं आएगी, मतलब सिर्फ सरकार बदल देने या किसी एक सिस्टम को खत्म कर देने से नहीं, बल्कि नीचे से छोटे छोटे विकल्पों को बनाने और फैलाने से आएगी, जो धीरे धीरे मोड सी, बी और नेशन ए तीनों को कमजोर करे।
हाँ, आप काफी हद तक सही समझ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि आधुनिक दुनिया की ये संरचनाएं, बाजार, सरकार, राष्ट्र की पहचान, जिन्हें हम अक्सर कुदरती या हमेशा से चली आ रही मान लेते हैं, वे असल में ऐतिहासिक रूप से बनी हैं और एक दूसरे पर टिकी हैं। वे हमें इन ताकतों के बीच के छिपे हुए रिश्तों को देखने के लिए एक नया नज़रिया और नई शब्दावली देते हैं।
और भविष्य के लिए ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है, ये मोड डी, ये एसोसिएशनिज्म? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है, एक यूटोपिया?
करातानी इसे एक नियामक विचार, रेगुलेटिव आइडिया कहते हैं कांट के शब्दों में, मतलब एक ऐसा आदर्श जो शायद पूरी तरह कभी हासिल ना हो, पर जिसकी तरफ बढ़ते रहना ही सही दिशा है, एक ध्रुव तारे की तरह। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या मोड डी सिर्फ एक यूटोपिया है, या ये वाकई हमारे समय की भयानक चुनौतियों जैसे जलवायु संकट, बढ़ती असमानता, राजनीतिक नफरत का सामना करने के लिए व्यवहारिक रास्ते बनाने का आधार बन सकता है?
क्या बन सकता है?
शायद, हाँ। क्या हम अपने चारों और अपने समुदायों में, ऑनलाइन सहयोग में, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के प्रदर्शनों में मोड डी के तत्वों को पहले से ही काम करते हुए नहीं देख सकते? करातानी हमें उम्मीद देते हैं कि एक अलग, ज्यादा न्यायपूर्ण और स्वतंत्र दुनिया मुमकिन है।
लेकिन
वो अपने आप नहीं आएगी। उसे हमें और आपको मिलकर सचेत रूप से रोजमर्रा के स्तर पर बनाना होगा। ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि हम इसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, क्या हम मोड डी की तरफ बढ़ सकते हैं।
बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ा है आपने। कुजिन करातानी के विचार वाकई झकझोड़ने वाले हैं।
हाँ, वे हमें दुनिया को एक नए ढंग से देखने पर मजबूर करते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।